नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में 6 लेन वाले एलिवेटेड रोड और 2 अंडरपास बनाने की परियोजना को मंजूरी दी। जल और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा, सरकार नागरिकों को बेहतर जल सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्री केंद्रित सुविधाएं देने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम का बजट 28 जनवरी को प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी के दक्षिणी क्षेत्र में 6 लेन का एलिवेटेड रोड और 2 अंडरपास बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत एमबी रोड पर साकेत जी ब्लॉक से पुल पहलादपुर तक एक आधुनिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना को 1471 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अगले वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल निगम करेगा, जिससे सड़क और मेट्रो दोनों बुनियादी ढांचों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्माण से न केवल यातायात का दबाव कम होगा बल्कि आवागमन का समय भी उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएगा। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
दिल्ली सरकार के जल और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली जल बोर्ड की 176वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने, सीवेज के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने के लिए चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार शहर के जल प्रबंधन के लिए जवाबदेही, कुशलता और समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि वजीराबाद और चंद्रावल क्षेत्र में पानी की सप्लाई कम दबाव पर उपलब्ध रहेगी। जल बोर्ड ने जानकारी दी कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी से लगातार अधिक प्रदूषण आने की वजह से वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन लगभग 25-50% प्रभावित हुआ है। जल बोर्ड के अनुसार आजादपुर, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, मजनू का टीला, सिविल लाइंस, एनडीएमसी क्षेत्र, करोल बाग और वजीराबाद प्लांट के आसपास के इलाके में जल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज कृषि भूमि पर सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की घोषणा की। श्री सूद ने बताया कि नए निर्देश के तहत हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता अब समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के वर्चुअल और ग्रुप नेट मीटरिंग विनियमों का लाभ मिलेगा, जिससे किसान ग्रिड में दी गई बिजली का आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसान अब अपने खेतों में ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र से सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए नीचे परंपरागत खेती जारी रखकर दोगुनी आय कमा सकेंगे। श्री सूद ने कहा कि ये सुधार दिल्ली को सोलर हब में बदलने की व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में वार्षिक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि कार्यक्रम में ई मैगजीन और मिनी ग्राइंड का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने व्यावहारिक शिक्षा और समस्या हल करने के कार्यक्रम में प्रभावी रूप से हिस्सा लिया। श्री सूद ने कहा कि यह कार्यक्रम सीखने, रचनात्मकता और नवाचार से परिपूर्ण रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यमुना की सफाई को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों से प्रगति रिपोर्ट लेकर चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि संबंधित विभागों को औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी को उन्नत करने और नए ट्रीटमेंट प्लांट्स के समयबद्ध निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहर के पड़ोसी राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुए नालों की सफाई का काम तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर पॉड होटल, प्रीमियम डाइनिंग और अन्य यात्री केंद्रित व्यावसायिक सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
NCRTC ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत स्टेशन परिसर के अंदर 3 पॉड्स की क्षमता वाले एक पॉड होटल, एक रेस्तरा और ऑफिस स्पेस तथा फूड एंड बेवरेज रिटेल आउटलेट जैसी यात्री केंद्रित सुविधाओं का विकास किया जाएगा। निगम ने यह भी बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 4000 वर्ग मीटर से अधिक का एक संभावित प्रॉपर्टी डेवलपमेंट क्षेत्र लाइसेंस पर दिया गया है। NCRTC के अनुसार इससे यात्रियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में आतिथ्य और की सुविधाओं को एकीकृत किया जा सकेगा। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज ताहिरपुर के सुंदर नगरी स्थित प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र ऑर्थोपेडिक का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दिव्यांगजनों के पुनर्वास, कौशल विकास, कृत्रिम अंग निर्माण, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कार्य प्रणाली की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का ये संकल्प है कि दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्रीमती स्वराज ने बताया कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्रीमती स्वराज ने नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा दिए गए बयान डॉ BR अम्बेडकर के संविधान का अपमान है। मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज ने जो भी कुछ कहा है वो पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के कहने पर कहा है।
अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जिस तरह की टिप्पणी सौरभ भारद्वाज ने की है ये निंदनीय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी अपमान है और हमारे भाई बहनों का भी अपमान है। और मुझे तो लगता है कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को सौरभ भारद्वाज को बर्खास्त करना चाहिए और खुद अरविंद केजरीवाल को आकर इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए कि पूरे दलित समाज को और जनजाति समाज पर जो टिप्पणी की है यह शोभनीय है।
श्री सचदेवा ने कहा कि श्री भारद्वाज और श्री केजरीवाल को आगे आकर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वायुसेना बैंड ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति से सराबोर प्रस्तुतियों का आनंद लिया। बैंड ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, AR रहमान द्वारा रचित लोकप्रिय वंदे मातरम और 1980 के दशक के बॉम्बे शैली के मिश्रण के साथ एक विशेष वंदे मातरम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में शोले थीम की वाद्य प्रस्तुति भी शामिल रही। दिल्ली नगर निगम का बजट इस महीने की 28 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली और नगर निगम की वर्तमान परिस्थितियों का समग्र आकलन कर बजट को अंतिम रूप दिया गया है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें और शहर के समग्र विकास को एक नई दिशा मिले। उन्होंने कहा कि पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र में सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने तथा सतत आजीविका सृजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में उभरी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों तक विस्तार किया गया है जिससे 132,000 से ज्यादा शिल्पकारों, बुनकरों और छोटे उत्पादकों को लाभ मिल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने कहा है कि पिछले 13 महीनों में एम्स के शल्य चिकित्सा विभाग ने 1000 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुनील चुंबर ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में 50% की कमी आई है। आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन राज्यों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराओं, भाषाई विविधता और उद्यमशील लोगों के माध्यम से देश के ताने बाने को मजबूत किया है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मिश्रा ने कहा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्य भारत की सांस्कृतिक विविधता की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की लोक परंपराएं, इनके नृत्य और संगीत देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करते हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए और 4 मार्च को होली पर बंद रहेगा। उद्यान में प्रवेश सभी के लिए निशुल्क है। ऑनलाइन बुकिंग visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर और ऑफलाइन गेट नंबर 35 के बाहर स्थित सेल्फ सर्विस कियोस्क के माध्यम से कराई जा सकती है। उद्यान के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें, बेबी मिल्क की बोतलें और छाते ले जाए जा सकते हैं। इनके अलावा किसी अन्य प्रकार की वस्तु ले जाने की मनाही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं वैष्णवी।
डाक विभाग ने देश भर में 887 एटीएम चालू करके अपने एटीएम ढांचे को मजबूत किया है। संचार मंत्रालय ने बताया कि इन एटीएम के जरिए ग्राहक नकदी निकाल सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं और अन्य मूलभूत लेन देन भी कर सकते हैं। ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए लाभदायक है। राजधानी में आज मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सवेरे हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में 6 लेन वाले एलिवेटेड रोड और 2 अंडरपास बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के जल और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा है सरकार नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्री केंद्रित सुविधाएं देने का निर्णय लिया। दिल्ली नगर निगम का बजट 28 जनवरी को प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।